Là cái ngôn cuối cùng hay ngôi giấy đó sẽ thành thẻ là gian thành thẻ Estu Swatan or Anekan or Ahinsa to nahi Jena Charan mein Ahinsa bhi nahi Anekan to Sadhwa do shabd aise hain jinko samajhna avashyak hai Vaad ka arth hota hai kathan तो अनेकांत के शब्द साथ भी बाद लगा है और स्यात के साथ भी बाद लगा हुआ है। इन दोनों को अगर शब्दों की व्याख्या मत करें तो अनेक अंत मतलब होता है धन। अनेक अंत जिसमें है ऐसी वस्तु का कथन करने वाला अनेकांत और स्यात बाद अनेक धर्मात्मक वस्तु के किसी एक धर्म को सापेक्ष कथन करने वाली शैली का नाम स्यात। स्याद मतलब होता है कथनचित किसी अपेक्षा इन रिलेशन टू। तो अपन कोई भी जब बात करेंगे कोई भी कथन करेंगे तो वो किसी न किसी अपेक्षा किया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा स्यादवाद होगा। उसके द्वारा ही सही वस्तु का प्रारूपण क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है अनेक अंत अर्थात अनेक धर्म उसमें विद्यमान है। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर अपन देखें एक दो साल के बेटे को देखें या कि नया जन्म लिया है बेटे को देखें वो 50 साल का वो हो गया मान लीजिए 50 साल गुजरने पर तब भी अपन क्या व्यवहार करते हैं कि ये वही बेटा है हमने बहुत बचपन में देखा था जब ये पहले ही हुआ था तब आज इतने वर्ष हो गए उसके बाद देख रहा हूँ तो वही वही है ये जो वही है मैं जो देख रहा हूँ वो एक एक पक्ष है। इसमें वही कौन सी चीज़ है जो शाश्वत है वो जीव है। यहाँ जीव को हम शाश्वत देख रहे हैं लेकिन उसकी जो पर्याय हैं वो पहले बालक था फिर किशोर हुआ फिर युवा हुआ फिर प्रौढ़ हुआ वृद्ध हो गया ये जो विभिन्न उसकी अवस्थाएं हैं तो इनको कथन करेंगे तो उस अपेक्षा से तो कहना पड़ेगा कि ये वो बालक थोड़ी है ये तो वृद्ध है लेकिन है तो वही। अगर आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा की दृष्टि से वही चीज शाश्वत दिखाई पड़ती है पर्याय की अपेक्षा से वही चीज नाशवान दिखाई पड़ती है। तो एक ही चीज नाशवान भी है और शाश्वत भी है नित्य भी है अनित्य भी है। एक दिखाई पड़ती है क्योंकि कंटिन्यूटी एक ही की है अनेक दिखाई पड़ती है विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ती है तो एक भी है अनेक भी है। इसी तरह हर वस्तु जो है अनेक विरोधी धर्मों से मिलकर के बनी हर वस्तु में विरोधी लगने वाले एक तरफ शाश्वत कह रहे हैं एक तरफ जो है नश्वर भी कह रहे हैं। तो पर्याय की दृष्टि से देखेंगे जब हम तो वो नश्वर उसकी अवस्थाएं मिटती हैं बनती हैं लेकिन वस्तु तो ज्यों की ज्यों रही आती है। इस तरह हम वस्तु को अगर पूरा देखना चाहें तो हम इस तरह से विभिन्न पहलुओं का आलंबन लेते हैं। इसको अपन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं सापेक्ष कथन को पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे कि किसी अपेक्षा से कथन कर रहे हैं किस दृष्टिकोण से कथन कर रहे हैं। इस तरह अनेकांत के बारे में इतना ही अपन समझें कि वो अनेक धर्मों वाली वस्तु का कथन करता है और जब अनेक धर्मों वाली वस्तु का एक साथ चूंकि कथन किया नहीं जा सकता इसलिए सापेक्ष एक के बाद एक का कथन किया जाता है उसके लिए जो शैली अपनाई जाती है उस साधवाद। इस तरह दोनों शब्द हो गए अनेकांत और साधवाद। अब साधवाद में भी कथन की शैली कितने ढंग से हो सकती तो कहते सेवन फोर्थ जिसको एक शब्द और आता है इसी के पास में सप्तभंगी सुनने में आएगा सप्तभंग या कि सप्तभंगी क्या कहलाती है तो वो सेवन फोल्ड्स है वो बात कहने के सात ढंग सात तरीके हैं। सापेक्ष कथन करेंगे तब भी सात प्रकार से कह सकते हैं ये मैं कई बार वैसे चर्चा कर चुका हूँ फिर भी आपके स्याद अस्थि स्याद नास्ति स्याद अस्थि नास्ति स्याद अवक्तव स्याद अस्थि अवक्तव स्याद नास्ति अवक्तव स्याद अस्थि नास्ति अवक्तव ये सेवन जो है वो फोल्ड्स हैं कहने के ढंग हैं। अब स्याद अस्थि का मतलब क्या हुआ किसी अपेक्षा से वस्तु है किसी अपेक्षा से वही वस्तु नहीं भी है किसी अपेक्षा से जब वो है तब नहीं भी है और बहुत कुछ ऐसा जो कहा नहीं जा सका है अवक्तव भी है। जब वो वस्तु है तब भी उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया जब वो वस्तु नहीं है किसी अपेक्षा से तब भी उसमें बहुत कुछ है जो कहा नहीं गया और जब है और नहीं दोनों के बीच भी बहुत कुछ है जो कहा नहीं गया। इस तरह से ये साथ ही बातें एक उदाहरण लेने पर राम जी दशरथ के बेटे हैं किसी किस अपेक्षा से हैं दशरथ के बेटे हैं पिता क्योंकि दशरथ पिता हैं इसलिए पिता की अपेक्षा वो बेटे हैं लेकिन रामचंद्र जी भारत के बेटे नहीं हैं कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं। दशरथ के बेटे तो हैं लेकिन भरत के बेटे नहीं हैं, तो स्याल नास्ति हो गई। जिस समय हम ये कहेंगे कि वे दशरथ के बेटे हैं उसी समय भरत के बेटे नहीं हैं, दोनों चीजें एक ही साथ हैं, एक ही वस्तु है। और इसके अलावा बहुत सारे संबंध हैं, वे किसी के भाई भी हैं, वे किसी के चाचा भी हैं, वे मामा ताऊ भी हैं, सब कुछ है। तो वो अवक्तव्य जो कहा नहीं गया, ऐसा भी कुछ रहेगा जो कहा नहीं गया। फिर जिस समय हमने कहा कि वे दशरथ के बेटे हैं उस समय भी बहुत कुछ ऐसा रह गया जो कि कहा नहीं गया। जिस समय हमने कहा कि वे भरत के बेटे नहीं हैं उस समय बहुत कुछ रह गया जो कि कहा नहीं गया, इसको श्यावस्ती वक्तव्य श्यावनास्ती वक्तव्य कहेंगे। फिर जिस समय हमने ये कहा था कि दशरथ के बेटे हैं भरत के बेटे नहीं हैं उस समय भी बहुत कुछ ऐसा रह गया था जो कहा नहीं गया था, तो श्यावस्ती नास्ती वक्तव्य। अब और कुछ कहने का ढंग ही नहीं रह सकता, इतने ढंग से कहेंगे। इसी को जो है अपन कहते हैं सप्तभंगी। अब क्या होता है कि जो के सप्तभंगी या कि सातवार है उसी को अपन एक शब्द और नया पास में खड़ा हुआ है नए नए, जो हमें वस्तु के किसी एक अंश का कथन करता है या वस्तु के किसी एक अंश का ज्ञान करवाता है या अनेकांतात्मक वस्तु के किसी एक पहलू को किसी अपेक्षा से मुख या गौण करके कथन करता है उसे कहेंगे नय, या कि वक्ता के अभिप्राय को नय कहेंगे, ऐसी परिभाषा भी। इसके द्वारा भी हम इसी चीज को वस्तु को जानते हैं, ये सब जानने के उपाय हैं। तो नए वस्तु को जानने के उपाय क्या करेंगे उसमें, कि जिस समय हमने ये कहा कि सामान्य रूप से कि रामचंद्र जी जो है दशरथ के पुत्र हैं, रामचंद्र दशरथ के पुत्र हैं, हमने जिस समय ये कहा तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र भी हैं तो क्या और कुछ भी है क्या, कहते नहीं। इस अपेक्षा कहेंगे तो पुत्र भी, लेकिन जब हम सामान्य रूप से कहेंगे कि रामचंद्र पुत्र भी है, वे भाई भी, वे किसी के मामा और चाचा भी है, जब तो हम भी लगाएंगे, भी में गुंजाइश है कि हम किसी अपेक्षा बाद में लगा सकते, लेकिन ही का कथन जब भी होगा तब उसको हम निश्चित करके ही कथन करेंगे। इसी तरह जब किसी चीज को हम वस्तु के किसी एक अंश को कहते हैं, जिस समय हम कहेंगे कि वस्तु नश्वर है, उस समय हमने वस्तु के जो शाश्वत पहलू है उसको हमने अभी नहीं कहा है, उसका निषेध नहीं किया है, लेकिन हमने उसको गौण कर दिया। इसको कहते हैं मुख और गौण करने की प्रक्रिया, इसी को अपनी भाषा में अर्पित और अनर्पित कहते हैं। और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अर्पिता अनर्पित सिद्धि, वस्तु तत्व की सिद्धि जो है मुख और गौण करके ही होती है। वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं, उनमें से किसी एक धर्म का कथन जब हम करते हैं तब दूसरा धर्म गौण हो जाता है, वो धर्म मुख हो जाता है। जब हम कह रहे हैं कि दशरथ के बेटे हैं रामचंद्र जी, तब बहुत सारी चीजें हैं जो हमने नहीं कही तो उसमें हैं, ऐसा नहीं माने कि हमने उसका निषेध कर दिया है। ये हमारे कथन करने की शैली होती है, इसी को मुख और गौण की शैली कहते हैं। चाहे जिस तरह कर लीजिए, कितने सारे शब्द हो गए अनेकांत सात्वाद, उसी के वाली में खड़ा है सप्तभंगी, उसी में नए व्यास, उसी में मुख और गौण की शैली, जैसा कहना हो है, सब एक ही चीज है। कथन करने की शैली और वस्तु को जानने के ढंग उपाय, वस्तु को किस तरह जानेंगे, एक चीज को जानने के लिए हम कितने पॉइंट ऑफ व्यू से जान सकते हैं। जैसे अपन किसी भी उसको देखते हैं डायग्राम को, तो लेफ्ट साइड से देख सकते हैं, राइट साइड से तो दूसरा व्यू दिखाई पड़ेगा, टॉप व्यू अलग होगा, नीचे से बैठ करके देखेंगे तो एक अलग व्यू होगा। ये जो है जो व्यू है देखने के जो ढंग है, तब जब हम समग्र रूप से वस्तु को जानना चाह रहे हैं तो हमें हर पहलू से देखना, क्योंकि वस्तु हर पहलू से अलग अलग दिखाई पड़ती है। वैसे वस्तु अपने आप में उन सबको मिला करके है। इसके लिए एक बढ़िया उदाहरण अपने हमेशा चलता है कि चार अंधे लोग थे और वो एक हाथी को देख रहे थे, एक ने जो है सूंड पकड़ ली, उसने कहा रे क्या बात करते हो, ये तो जो है बिल्कुल उसके केले के पेड़ जैसा मालूम पड़ता है। दूसरे ने पैर पकड़े तो बोले नहीं खंबा है खंबा, हाथी तो खंबे जैसा है। तीसरे ने उसका पेट पकड़ा तो उसने कहा नहीं दीवार है एकदम प्लेन, दीवार की तरह होता हाथी। और उसने कान पकड़ ली तो उसने कहा ये तो सूप जैसा है बिल्कुल। अब ऐसा करके चारों ने अपना वो दिया तो सब एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, नहीं तुम गलत हो, वो कहने लगा तुम गलत हो, हम सही है तुम गलत हो। तो एक आंख वाला आया, उसने कहा चारों सही है, बोले ऐसे कैसे हो सकता चारों सही कैसे हो सकता।
वो एक ही वस्तु को देखने के लिए तुम्हारे चार अलग अलग ढंग हैं, वस्तु तो वही है जो तुम देख रहे हो, इसमें झगड़ा करने की बात है। इसी तरह से जो है ये शाकवाद की शैली है, ये नए है जो कि हमें झगड़े से बचा करके वस्तु के समग्र को दर्शा पाता है, क्योंकि हम पूरी वस्तु को नहीं देख पाते, और देख भी लेते हैं तो पूरी वस्तु को कह नहीं देते। एक व्यक्ति के बारे में आप एक बार में एक ही चीज़ कहेंगे कि ये पिता है, इतना कह पाएंगे, फिर आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं समझना कि ये पुत्र नहीं, नहीं आप ऐसा मत समझना कि ये चाचा नहीं है, लेकिन आप एक के बाद एक ही तो कहेंगे, कितने संबंध बताते जाएंगे लेकिन किसी ना किसी अपेक्षा से। तो इस तरह से है वस्तु के बारे में, इससे क्या होगा कि मैंने पहले समझा था कि वैचारिक सहिष्णुता होती है, विचारों में बहुत सहिष्णुता आती है, हम दूसरे के विचार का सम्मान कर पाते हैं, कि किसी अपेक्षा ठीक कह रहा है, कोई कोई गड़बड़ नहीं है, व्यक्ति का वस्तु को अपना देखने का नजरिया है वो जिस ढंग से देखेगा उस ढंग से दिखाई पड़ेगी, हम उसी चीज को दूसरे ढंग से देख रहे हैं, दूसरा अपनी तरह से देख रहा है वस्तु को, इस तरह से जो है हर विचार का हम सम्मान करें, या कि सम्मान न कर पाए तो कम से कम अपमान न करें, वैचारिक सहिष्णुता होना चाहिए, दूसरे के विचारों को हम हटा पा रहे हैं, अगर कोई किसी के बारे में अपने बारे में सही नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ी दूर आए समझदार कर सकें, ठीक है आपका सोच ठीक है, मैंने कभी किसी को दुख चुराया होगा इस जीवन में, तो कभी भी नहीं चुराया होगा, आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम झगड़ा नहीं करने उतारी होंगे कि कैसे कह रहे हैं आप तो मान रहे क्या देखते हैं आपको किसी अपेक्षा को, तो सापेक्ष कथन में सुविधा वस्तु को जानने की भी होती है और वस्तु के सही सही स्वरूप को जानने की भी होती है। अन्य कांत के बारे में पूछना चाहें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इतना ही अनेकांत और सात्वाद के बारे में। प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म अर्थात गुणों से युक्त है, प्रत्येक वस्तु अनेक धर्म अर्थात गुणों से, धर्म का अर्थ यहाँ पर गुण से ले लेना, अनेक गुणों से युक्त है। एक वस्तु में एक ही समय अनेक विरोधी मालूम पड़ने वाले गुणधर्म रह सकते हैं, एक वस्तु में एक ही समय अनेक विरोधी मालूम पड़ने वाले गुणधर्म रह सकते हैं, यही वस्तु की अनेकांतता है। जो वस्तु किसी एक दृष्टि से नित्य या शाश्वत दिखाई देती है, जो वस्तु किसी एक दृष्टि से नित्य या शाश्वत दिखाई देती है, वही दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर जो वस्तु किसी एक दृष्टिकोण से नित्य या शाश्वत दिखाई देती है, वही दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर अनित्य या नश्वर दिखाई देती है। वही दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर अनित्य या नश्वर दिखाई पड़ती है। इस तरह वस्तु अपने में अनेक धर्मों को समाये हुए है, इस तरह वस्तु अपने में अनेक धर्मों को समाये हुए हैं। हमें वस्तु को पूरा जानने के लिए हमें वस्तु को पूरा जानने के लिए उसे हर पहलू हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अनाग्रही होकर समूची वस्तु को जान पाता है। ऐसा करने से हमारा मन अनाग्रही होकर समूची वस्तु को जान पाता है। अगर हम आग्रही हो जाते हैं तो फिर कोई वस्तु को नहीं जानते। किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं वो तो नित्य ही है, तो फिर हम अनित्यता को नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम वस्तु के हर पहलू को जानेंगे तो अनाग्रही होकर के पूरी वस्तु को जान पाएंगे। ये इसका महत्व हो गया आने का। उदाहरण तो आप लिखेंगे, उदाहरण हमारी कोशिश लिख लीजिएगा, सामान्य जीवन में लिख लीजिएगा। मैं लिखा दूंगा, मैंने कहा क्या लिखना, लिख लीजिए। सामान्य जीवन में भी हम देखते हैं, सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति एक समय में अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पर पिता पुत्र नाना मामा दादा चाचा आदि कई रूपों में दिखाई देता है। पर वो इन सबके बीच एक ही रहता है। उसे पूरा जानना हो तो उसके हर रिश्ते को हमें जानना हो होगा कि किसी तरह जीवादी पदार्थों को जानने के लिए अनेकांत का सहारा लिया है। उदाहरण है, अब साधवा देख लीजिएगा उसी के साइड में, मतलब दो साधवा अनेक धर्मों से युक्त वस्तु का कथन करने की शैली को साधवाद कहते हैं। अनेक धर्मों से युक्त वस्तु का कथन करने की शैली को साधवाद या सापेक्ष कथन करना हो साधवाद है, या सापेक्ष कथन करना हो साधवाद है। असल में प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं। और सभी धर्मों को एक साथ कहना संभव नहीं होता। दिख रहे हो? प्रत्येक वस्तु में अनेक गुणधर्म होते हैं सभी धर्मों को एक साथ कहना संभव नहीं है। इसलिए इसलिए एक बार में किसी एक अपेक्षा से किसी एक धर्म को कहने की पद्धति अपनाई जाती है। यही जातवाद पद्धति है। जिस समय वस्तु के यही जातवाद पद्धति है, ठीक है, जिस समय वस्तु के किसी एक धर्म का कथन हम किसी अपेक्षा से करते हैं, जिस समय वस्तु के किसी एक धर्म का कथन हम किसी अपेक्षा करते हैं, उस समय वह धर्म मुख हो जाता है। जिस समय हम किसी वस्तु के किसी अपेक्षा, क्या लिखा,
जिस समय किसी अपेक्षा से कहते हैं तो उस समय वह धर्म मुख्य,
पूरा पूरा बात बताइए। जिस समय
वस्तु की किसी एक धर्म का धर्म की अपेक्षा से करते हैं, उस समय वह धर्म मुख्य हो जाता है,
वह धर्म मुख हो जाता है और अन्य सभी धर्म गौण हो जाते हैं, सेकेंडरी, गौण मतलब सेकेंडरी, और उस समय अन्य सभी धर्म गौण हो जाते हैं। जैसे जिस समय हम कहते हैं यह व्यक्ति अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, उस समय हम उस व्यक्ति के पितापने को मुख करते हैं, उस समय हम व्यक्ति के पितापने को मुख करते हैं, शेष धर्म पुत्र दादा मामा आदि गौण प्रभु है उस समय। ये हो गया मुख गौण करना, सीखो को नयवाद के बैठक में नयवाद भी लिख सकते हैं जितना चाहे, या इसी को सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, साधवाद को एक दूसरा टर्म दें नयवाद, देखिए सापेक्षवाद, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो एक लिखा था पहले सप्तभंग है ना, वो लिख लें सप्तभंगी सेवन फोल्ड अब एक्सप्लेनेशन, सेवन फोल्ड अब एक्सप्लेनेशन, वस्तु के कथन करने के सात ढंग, वस्तु के कथन करने के सात ढंग, जानने के लिए कथन नहीं लिखा, वस्तु के जानने के साथ, नंबर वन क्या वस्तु, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इतना सरल नहीं कहा जा सकता, क्या वस्तु, नंबर टू क्या वस्तु, क्या लगाना आधा सा या आधा दा, क्या वस्तु क्या नास्ती, फिर दोनों को मिला के लिख लीजिएगा, नंबर तीन स्यादस्ती नास्ती एक साथ, नंबर चार स्याद अवक्तव, स्याद अवक्तव, नंबर पांच स्याद अस्ति अवक्तव, क्या है इसकी मतलब। नंबर सिक्स, नास्ती अवस्तव। नंबर सेवन, सियाद अस्ति नास्ती अवस्तव। वो मिलता तो नहीं जल्दी से, तीन तीन वॉल्यूम्स है। चार अस्थि लिखा है, वहां लिखेंगे द पॉजिटिव एस्पेक्ट, द पॉजिटिव एस्पेक्ट। नंबर टू, द नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट। नंबर थ्री, द कन्फ्लुएंस ऑफ द अपोजिट एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, समन्वय दोनों का। The confluence of the positive and negative aspects. Number four, the inexpressible aspects. The inexpressible aspects. Number four, number five. Not too easy. The positive inexpressive aspects. Three, the negative inexpressive aspects. For the confluence of the positive and negative. Inexpressible aspects. और इसको लिखेंगे अपन द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेवन एस्पेक्ट्स। सप्तभंगी मतलब द डॉक्ट्राइन ऑफ द सेवन एस्पेक्ट्स। ठीक है, का उपयोग कैसे करेंगे ये। तो जैसे अपन ने कहा कि पिता है, तो पिता भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी का भाई भी है, ऐसा भी हम कह सकते हैं भी लगाने हैं। और जब हमने ही लगा दिया तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि वो अपने पुत्र की अपेक्षा पिता ही है। ये तीनों चीजें इसी में लगेंगी, ही में ही लगेंगी, इसमें भी नहीं चलेगा। स्याद अस्ति वह किसी अपेक्षा ऐसा ही है, स्याद नास्ति वह किसी अपेक्षा ऐसा नहीं ही है। हाँ, नहीं ही है। तो ये जो सेवन फोल्ड्स बनेंगे वो ही लगा के ही करना पड़ेगा। स्याद अस्ति वह है, स्याद अस्ति ये तो कहना पड़ेगा, वह है ही तो किसी अपेक्षा है, क्योंकि तो स्याद लगा दिया ना, मतलब कथनचित
निश्चय
में ही लगेगा। व्यवहार ये नहीं लगा, व्यवहार गड़बड़ निश्चय ग्रहण करके मत जो तब तभी मैं निश्चय में हाँ नहीं लगाया जाता, वस्तु स्वरूप के जानने में लगाया जाता। इसमें प्रमाण और नए लगाओ तो हम मान जाएंगे। जब नए सप्तभंगी होती है
प्रमाण में भी लगेगा और नए नहीं,
उल्टा बोल रहे प्रमाण सप्तभंगी में भी लगेगा और नए सप्तभंगी में ही लगेगा, ऐसा कहेंगे। ही से निश्चित हो गया, ही से ऑप्शनल हो गया, पॉसिबिलिटी और भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इस अपेक्षा तो यही है,
डेफिनेट
हो गया। जब हमने किसी अपेक्षा लगा ली, जब हम किसी अपेक्षा नहीं कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि ये सब ही है, ऐसा भी है, बहुत प्रकार से। नहीं, कथन करने की शैली जो है वो हमारी भी होना चाहिए, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी ही का उपयोग जब हम करेंगे तब हम जब कोई ना कोई फिक्स कर लेंगे तब करेंगे, अन्यथा ही का कथन करना ये कहना चाहिए मिथ्या माना गया है।
और सब रिश्ते झूठे झूठे
हाँ। नहीं वो पिता ही है, कैसे कह रहे हैं आप पिता ही है? ये कहो कि वो पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, ये तो मान लूंगा, लेकिन ही लगाने से झगड़ा हो जाता है, कोई उसी से बचना उसी के बचाने काम थे। हम ही लगा देते हैं सो डेफिनेट कह देते हैं, उससे बचने के लिए कह रहे हैं कि नहीं ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए कहना चाहिए ऑस्पेक्ट डिफरेंट पॉइंट ऑफ
व्यू।
सापेक्ष कहेंगे तो ही कह सकते हैं, जब सामान कथन करेंगे तो भी कह सकते हैं। आदेश ने लिखा ना ही से भी की ओर चले, इसे भी की ओर मतलब किसी एक चीज की जिद नहीं करें, हम वस्तु के विभिन्न पहलुओं को माने, वही भी ऐसा भी है, ऐसा भी थी अपन कह रहे थे, ऐसा भी है, आप झगड़ा मत करिए, ऐसा भी सीमित नहीं होगा, विशाल हो जाएगा। विभ्रम और विमोह ये ज्ञान के तीन दोष होते हैं। अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो एक आसान की छुट्टी ले लो, इसके बाद फिर रहो, फिर
एक साल
ऐसा नहीं, हमारे साथ रहना
पड़ेगा,
ऐसा तो कर लेंगे, एक साल की छुट्टी लेके हमारे साथ में रहो, चलो तैयार, एक साल का कम से कम कोर्स तो है, पूरा कोर्स है, 56 चैप्टर उसमें बनाए गए हैं। ऐसे पत्राचार से भी इसको कोर्स को किया जा सकता है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, मैं सोचता हूँ कि उसको थोड़ा सरल कर दें फिर पढ़ें, क्योंकि एक महीने के लिए एक पूरे यूनिट उसमें 6-7 लेसन रहें, उनको सीख लें, अगले महीने में दूसरा, इस तरह से पूरा जैनेज में एक साल में फंडामेंटल्स भी है कि अच्छी खासी स्टडी। अब जैसे अपन ने ज्ञान को थोड़ा टच करके छोड़ दिया, अपन ज्ञान के बारे में पढ़ें तो ढेर सारा कुछ अकेला ज्ञान के बारे में, मति ज्ञान तो मति ज्ञान के 336 भेद हैं, उनको पढ़ेंगे तो कितना डिटेल, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये ज्ञान ही अकेले पढ़े अगर अपन नए और प्रमाण, ये जो इसमें दो टर्म आई नए और प्रमाण, नए और प्रमाण पढ़ें तो एक एक चैप्टर अलग से नए और प्रमाण पे ही तो पूरा दर्शन आ जाता है उसमें, नए प्रमाण पढ़ना मतलब जैन दर्शन पढ़ना। फिर भी एक शब्दों का आपको जानकारी तो हो गई कि ये शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, आगे देखेंगे उन शब्दों की डिटेल।
हाँ,
देखिए